नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वॉलेन से आपका दोस्त योगेश। सरकार ने कई राज्यों में स्कूल व्यवस्था बहाल की है और इसको लेकर जो होटल है, छात्रावास है या फिर परिवहन की व्यवस्था है अभी तक बंद है और कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने की से परहेज कर रहे हैं ताकि तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए अभिभावक कई बच्चों को स्कूल भेजने से मना भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ में गांधीवादी एवं लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए हैं। अनूप सर, मोबाइल वाणी पे स्वागत सर आपका।
नमस्कार योगेश भाई, नमस्कार।
सर, तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने स्कूलें खोली है, सर इस पहल को किस तरीके से देख रहे हैं? सर
देखिए, तीसरी लहर की अभी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है कि पहल चल रही है कि आएगी। ये लोग ऐसा चर्चा कर रहे हैं, कुछ विद्वान भी बता रहे हैं, डॉक्टर भी बता रहे हैं, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात चल रही है वो कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है जो दूसरी लहर थी अभी तक। इसको लेकर के अगर हम शिक्षा को बहुत ज्यादा दिन तक बंद करेंगे तो भी समाज के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा, क्योंकि अगर शिक्षा ही समाज में नहीं रहेगी तो फिर समाज का निर्माण कैसे होगा। तो इसमें तो शासन प्रशासन और स्कूल और कॉलेज प्रबंधकों को चाहिए कि एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें हर व्यवस्था को मैनेज करते हुए स्कूल को खोला जा सके। उसके लिए उपाय है कि जो उनकी क्लासें लगती थी उन क्लासों को ऊपर और नीचे कर ले, दो शिफ्ट में स्कूलों को कर लिया जाए, दो शिफ्ट में कॉलेजों को कर लिया जाए और उसके साथ साथ चार चार दिन या तीन तीन दिन के क्लासेस कर लिया जाए। तीन दिन कुछ बच्चे आएंगे, तीन दिन कुछ बच्चे आएंगे। और कॉलेजों की रही बात तो कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो जागरूक होते हैं, उनके लिए ऐसी कोई डर की बात नहीं है। और कॉलेजों के जो रूम होते हैं, जो कॉलेज का कैंपस होता है बहुत बड़ा होता है, तो उसमें जो बच्चे हैं दूरी मेंटेन कर करके उनको बैठाया जा सकता है। हाँ, आप सख्ती कीजिए, आप गेट पर उनको सैनिटाइजर की व्यवस्था कीजिए, जो मास्क नहीं लगा कर आ रहे हैं उनको मत आने दीजिए, उनको कहिए कि आप मास्क लगा करके आइए। तो इन सारी व्यवस्थाओं को कर करके स्कूल को खोला जाना चाहिए और जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तब तक ये व्यवस्था बन नहीं पाएगी कि एक सभी समाज का निर्माण हो। आज देख लीजिए, बच्चे लगातार दो साल से घरों में बैठे हैं, वो पढ़ करके उब गए हैं। न गार्जियन को ऑनलाइन पढ़ाई समझ में आ रही है, न बच्चों को समझ में आ रही है अधिकांशतः। तो वो बच्चे उब गए हैं, अब वो दूसरी दिशा की तरफ जाने लगे हैं, उनकी पढ़ाई से रुचि कम होने लगी है। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रख करके धीरे धीरे स्कूल को खोलने की पहल करनी चाहिए।
जी सर। सर, जिस तरीके से स्कूल खोलने का जो कदम सरकार ने उठाया है वह सराहनीय है, लेकिन सर ना ही परिवहन विभाग पूर्ण तरीके से बहाल हो पाया है, दूसरी यह 50% विद्यार्थी की उपस्थिति में विद्यालय लगे और ना ही छात्रावास हो या होटल हो, ये व्यवस्थाएं अभी सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई है और विद्यार्थियों को परिवहन करने में भी समस्या आ रही है। सर, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?
देखिए, जो परिवहन की व्यवस्था है सरकारी परिवहन की, वो कहीं कहीं बंद है, बाकी जगह तो अधिकांश रूप में चालू हो चुकी है। जहाँ बंद है वहाँ के प्रशासन और जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, उनकी कमियां है। एक मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको कि पूरा मध्य प्रदेश खुला हुआ है, मध्य प्रदेश के राजस्थान बॉर्डर खुल गया है, मध्य प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है वो खुल गया है, मध्य प्रदेश के यूपी का बॉर्डर खुल चुका है। लेकिन एक बहुत बड़ी विसंगति है, अब सरकार क्या चाहती है, स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या चाहते हैं और स्थानीय प्रशासन क्या चाहती है कि जो नागपुर छिंदवाड़ा बॉर्डर है उसको लगातार बंद कर दिया गया है। अब क्यों बंद किया गया ये तो जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों को पूछना चाहिए शासन से कि जब आप पूरे बॉर्डर को खोल दिए तो इस बॉर्डर को क्यों बंद किए? क्या कोरोना कुंडली मार करके बैठा है नागपुर में कि हम छिंदवाड़ा में ही जाएंगे, दूसरे जगह नहीं जाएंगे? भाई, नागपुर से तो फ्लाइट का आवागमन हो रहा है, नागपुर से तो हजारों ट्रेन चल रही है प्रति हफ्ता, तो उससे नहीं रोके? लेकिन नागपुर छिंदवाड़ा बॉर्डर रोका गया। दूसरी बात, इस परिवहन बंद होने से भी स्कूल और कॉलेज प्रभावित हो रहे हैं। तीसरी जो बात है कि अधिकांश स्कूल और कॉलेजों के पास, जो प्राइवेट कॉलेज है उनके पास अपने साधन है। तो मैं पहले ही कहा कि अगर स्कूल को दो भागों में बांट लिया जाए, ऊपर और नीचे करके, एक शिफ्ट नीचे कर लिया जाए, एक शिफ्ट ऊपर करके चलाया जाए, तो परिवहन की व्यवस्था हो जाएगी और बच्चे कम रहेंगे तो बस में भी दूरी बना करके बैठ सकते हैं। तो ये तो स्कूल और कॉलेज वालों को प्रबंधन करना चाहिए उस टाइप के, ताकि बच्चे स्कूल आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भी लापरवाही है कि उस पर ध्यान नहीं देते हैं, यह कम पैसे में अधिकांश कमाने की चेष्टा रख रहे, तो कहीं ना कहीं त्याग तो करना पड़ेगा, थोड़ा कम कमाने की इच्छा रखना पड़ेगा, लेकिन शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न इनको करना चाहिए और साधन को इनको चलाना चाहिए।
जी सर, सर जिस तरीके से कई स्कूलों की मरम्मत कार्य चालू है और अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं, तो सर अगर स्कूल चालू होगी तो सर क्या अभी मरम्मत कार्य पूरा नहीं हो पाया है, साथ ही स्कूलों में जो शिक्षक है उनकी भी कमी देखी जा रही है, सर क्या किया जाना चाहिए इसको लेकर ताकि शिक्षकों की कमी भी दूर हो सके और बच्चे भी स्कूल में सुचारू रूप से अपना अध्ययन कर सके?
देखिए, ये जो स्कूल मरम्मत और शिक्षक की कमी, ये कोरोना की देन नहीं है, यह
जी
शासन की लापरवाही है। आज से ही नहीं, लगातार कई दशकों से जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको सरकार जानबूझ करके जर्जर व्यवस्था में ले गई है, उनको सुधार नहीं कर रही है। वो चाह रही है कि किसी भी प्रकार से स्कूल बंद हो जाए, किसी भी प्रकार से यहाँ के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में चले जाए, क्योंकि सरकार की इच्छा तो है कि शिक्षा को निजीकरण की तरफ भेजा जाए। और जो स्कूलें है, निजी की स्कूलें, उसमें आप देखिए कि पूंजी किसकी लगी है, तो उसमें जो पूंजी लगी है बड़े बड़े नेताओं की लगी है, मंत्रियों की लगी है, विधायकों की लगी है, नौकरशाहों की लगी है, क्षेत्र के बड़े बड़े नेताओं की लगी है। तो वो मिलजुल करके चाह रहे हैं कि सरकारी जो स्कूल है उसको बंद किया जाए। तो उसका एक यह भी कारण है कि स्कूल की बिल्डिंग नहीं बना रहे, स्कूल के लैट्रिन बाथ की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं, शिक्षा नहीं है स्कूल में, उसका भी कारण है कि सरकार स्कूलों को, कॉलेजों को निजीकरण की तरफ ले जाना चाहती है, इसलिए वो शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है और जानबूझ करके नहीं कर रही है, जबकि आवश्यकता है कि शिक्षक को भर्ती किया जाए। देखिए, शिक्षा और चिकित्सा जो है ये सेवा के क्षेत्र में आते हैं, व्यापारिक क्षेत्र नहीं है, और यह संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, लेकिन इसको मूलभूत अधिकार नहीं बना रहे। डॉक्टर लोहिया अगर कहा करते थे शिक्षा के क्षेत्र में कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, लेकिन आज की जो सरकार है वो शिक्षा को वर्गीकृत कर रही है। आज की जो सरकार है धनाढ्य वर्ग के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था कर रही है और कमजोर वर्ग के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था करना चाह रही है। तो जो धनाढ्य वर्ग के बच्चे है वो निजी स्कूल में जाकर के इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करते हैं, और जो कमजोर बच्चे हैं बेचारे वही जर्जर बिल्डिंग और बिना शिक्षक वाले स्कूल में जाते हैं, क्योंकि उनके पास आय का स्रोत ही नहीं है, तो पढ़ने कहाँ जाएंगे।
जी।
दूसरी बात, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि चिकित्सा को मौलिक अधिकार बनाओ, तो आज आप देख लीजिए कि चिकित्सा का भी जो व्यवस्था है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर बहुत ही कमजोर हुआ है। तो सरकार को तो चाहिए कि ये दोनों क्षेत्रों को मजबूत करे और सुचारू रूप से कॉलेज भी बनवाए, स्कूल भी बनवाए, और जो स्कूल के संबंधी, जो शिक्षा के संबंधी संसाधन है उनको जुटाए, ताकि सभी की शिक्षा समान रूप से हो सके, और चिकित्सा को भी मूलभूत अधिकार में लाना चाहिए।
जी सर, सर जिस तरीके से बच्चों को एक स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे कहीं अगर किराए पर रहे, जैसे जिला स्तर पर रहे तो 2,000 रुपये स्कॉलरशिप उनके रहने के लिए किराया दिया जाता है, और ब्लॉक लेवल पर 1,000 रुपये दिया जाता है जो उनका किराए के तौर पर, जिस तरीके से वो होटलों में क्या किराए के रूम में रह सकते हैं, लेकिन सर इसका भी कोई अभी तक के व्यवस्थाएं नहीं देखी जा रही है। सर तो क्या क्या वो एक विद्यार्थी अगर किराए से अगर रहता है तो उनके लिए अब तक कोई ऐसी व्यवस्था अभी तक कोई लागू नहीं की गई है और ना ही मिली है अभी कोरोना के बाद में? सर
जो सवाल है किराए की बात की और स्कॉलरशिप की, तो इसमें बहुत विविधताएं हैं। आप यह नहीं समझ पाएंगे कि यह किस आधार पर तय किया जा रहा है और किस आधार पे इनका मानक रखा गया कि किसको कितना दिया जाएगा, यह विविधताएं ये अभी तक समझ में नहीं आ रही। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि इनके रहने की व्यवस्था, तो हमने पहले ही कहा कि अगर शिक्षा को मौलिक अधिकार में मजबूती से डाल दिया गया होता, आईटीई जो लाई गई है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए लाई गई है, अगर शिक्षा को ठीक तरीके से चलाया जाता और स्थानीय स्तर पे सारी शिक्षा की व्यवस्था होती, स्कूल की व्यवस्था होती, अच्छे कॉलेज की व्यवस्था होती, तो हमें दूर जाने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। तो हम लोगों की तो मांग रहे हैं शुरू से कि आप स्नातक स्तर तक, स्नातकोत्तर तक विद्यार्थियों को फ्री शिक्षा दो, और जहाँ आपका कॉलेज है, जहाँ आपका कैंपस है, आप वहाँ पे अच्छी व्यवस्था करना चाहिए ताकि विद्यार्थी रह सके। लेकिन सरकार न रहने की व्यवस्था कर पा रही है, न उनके पढ़ाने की व्यवस्था कर पा रही है। ठीक है, अगर विद्यार्थी रह रहा है कहीं बाहर रह करके, तो उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था जो करना चाहिए उसको हर महीने करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी के पढ़ाई में बाधा न आए। लेकिन सरकार चारों तरफ से निजी बाजार के लोगों से मिल करके, क्योंकि आज आप देख लीजिए शिक्षा पूरी तरीके से बाजार की वस्तु हो चुकी है, और अधिकांश जो सरकारें हैं उनको हमारी बाजार पद्धति ही चला रही है, तो बाजारू ताकतों के साथ मिलकर के शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने का प्रयत्न कर रही है, और उसमें कमियां इसलिए रखा जा रहा है ताकि लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ, प्राइवेट कॉलेजों की तरफ भागे, ताकि इनकम के स्रोत निजी संपत्ति वालों को बढ़े। तो सरकार इसके तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को चाहिए कि उचित व्यवस्था करे ताकि विद्यार्थी रह सके और पढ़ सके और स्थानीय स्तर पे अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज खोले जा सके।
जी सर। हाँ सर, जिस तरीके से कोरोना काल में 1.5 साल से अधिक समय से स्कूलें ठप पड़ी हुई है और विद्यालय बंद है, इसके कारण बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाई है। सर अभी बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं, सर इनको अपने मुख्य धारा में लाने के लिए पढ़ाई किस तरीके से हो ताकि बच्चे अपने मुख्य धारा में आ सके। सर
देखिए, मुख्य धारा में बच्चे आने के लिए अभी तो कहना मुश्किल होगा, लगभग ये साल तो ऐसे निकल जाएगा भाई, क्योंकि अभी अभिभावक भी डर रहे, बच्चे भी डर रहे, कॉलेज प्रशासन भी डर रहा है, प्रबंधक भी डर रहा है, और तीसरी लहर की जो शंका है उसे नकारा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि हो जाए, तो उसमें समाज को बहुत संभल करके चलना है। मुख्य धारा में लाने की जो बात है, तो स्कूल को खोलना चाहिए और स्कूल को शिफ्ट वाइज चलाना चाहिए। एक तो स्कूल को नीचे और ऊपर दो भागों में बांट लिया जाए, कुछ कक्षाएं तय कर ली जाए कि बड़े बच्चे सुबह आएंगे या छोटे बच्चे सुबह आएंगे, और उनमें भी डे तय कर लिया जाए कि कितने बच्चे कितने दिन आएंगे, कितने बच्चे कितने दिन आएंगे। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम की खूब किताबें पढ़ा दो उससे शिक्षा सुधर जाएगी। आप ये कोरोना काल का जो 3-4 महीना चल रहा है, ये अब दिसंबर तक मान लिया जाए, तो ठीक है, इसमें आप कोर्स तो चलाइए, कोर्स हल्का फुल्का ठीक है, कोर्स कंप्लीट कराना है, उनको परीक्षा दिलवाना है, बोर्ड में बैठाना है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि कक्षा 8वीं तक के बच्चों को भारत के संविधान, इतिहास, भूगोल, भारत के दर्शन, विश्व के दर्शन को पढ़ाया जाए। नहीं जरूरी कि साइंस को पढ़ाया जाए, नहीं जरूरी कि बहुत बड़े बड़े विषय पढ़ाया जाए, बहुत इंग्लिश मीडियम पढ़ाई जाए। तो इस प्रकार से शिक्षा को आसान किया जा सकता है मुख्य धारा में लाने के लिए। शिक्षा को आसान करके ही मुख्य धारा में लाया जा सकता है। अभी तो आप देख रहे हैं कि ओपन बुक प्रणाली चल रही है, तो उससे कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि शिक्षा को हम पार्टों में बांट लें, अपने इतिहास, भूगोल, जो दर्शन है उनको पढ़ाया जाए। और खास करके बहुत अच्छा समय चल रहा है, इसमें हम बच्चों को संविधान पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूलों में खास करके संविधान को पढ़ाती ही नहीं। क्यों, क्या कारण है, ये भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए हमें कि भाई संविधान आप क्यों नहीं पढ़ाते। ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि अपने विद्यार्थियों को हम संविधान पढ़ा ले, स्कूलों में संविधान को लगा दिया जाए और हमारे जो दार्शनिक है, जो महापुरुष है, उनके विचारों को पढ़ाया जाए। तो इस समय में ऐसे हम कर करके पार्टों में बांट बांट करके हम शिक्षा को मुख्य धारा में ला सकते।
जी सर। सर ग्रामीण क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई ना उनके पास कोई व्यवस्था है, ना मोबाइल है, ना कोई अन्य साधन है, और ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए थे, तो उनको अब मुख्य धारा में लाने के लिए किस तरीके की व्यवस्था की जाए ताकि वे भी मुख्य धारा में आ सके और पढ़ाई अपनी व्यवस्था बराबर पढ़ाई कर सके। सर
देखिए, ग्रामीण इलाके की आप इकोनॉमिक व्यवस्था का भी अध्ययन करिए तो आज गाँवों में रोजगार के साधन नहीं है। जो लोग पहले गांवों से दूर जाकर के शहरों में जाकर के काम करते थे, कोरोना के बाद वो भी गांव में गांव के तरफ आ गए, रोजगार नहीं है। रोजगार के नाम पर सिर्फ मनरेगा का काम चल रहा है, जिनके पास खेती है वो खेती कर ले रहे, जिनके पास कुछ पालने का साधन है उससे अपना आय का साधन चला रहे, जीविका उपार्जन कर रहे। तो इस कंडीशन में अगर अभिभावक के ऊपर कहा जाए कि आप मोबाइल की व्यवस्था कीजिए, आज एक मोबाइल की कीमत लगभग 10,000 रुपया से ऊपर हो चुकी है। उसमें भी कई प्रकार की विविधताएं हैं कि कितने मोबाइल रहेंगी, कौन सी मोबाइल है जिससे ऑनलाइन क्लास चल सकता है, कुछ उसमें पावर दिया, वो पावर से कम रहेंगी तो मोबाइल है उसके ऑनलाइन क्लास नहीं चल सकता है। तो इस दौर में और ऑनलाइन शिक्षा, खास करके ऑनलाइन शिक्षा तो होनी ही नहीं चाहिए थी, कक्षा 8वीं तक तो इसकी कोई अनिवार्यता ही नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता। योगेश भाई, हमारा तो यह मानना है कि यह जो ऑनलाइन शिक्षा है, यह प्रयोग किया जा रहा है कि क्या यह सफल हो रहा है क्या, और जिस दिन सरकार को लग जाएगी, जिस दिन गवर्नमेंट को लग जाएगी कि यह सफल हो रहा है, उस दिन जो वास्तविक शिक्षा है उसको बंद कर दिया जाएगा। यह सरकार की एक प्लान है, और सरकार ही नहीं पूरे विश्व के WTO की एक प्लान है कि वास्तविक शिक्षा से समाज को कैसे दूर रखा जाए, आभासी शिक्षा के तरफ लेके चला जाए, ऑनलाइन शिक्षा के तरफ लेके चला जाए, क्योंकि ऑनलाइन में बड़ी बड़ी कंपनियों को मुनाफा ज्यादा है, मुनाफा कमाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा के तरफ ले जा रहे। तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से न समाज को सुधारा जा सकता है, न विद्यार्थियों को सुधारा जा सकता है, और न ही अपने समाज और शिक्षा को मुख्य धारा में लाया जा सकता है। इसलिए अनिवार्य है कि कैसे भी करके छोटे छोटे भागों में करके स्कूलों को चलाया जाए, कॉलेज को चलाया जाए, उनको खोला जाए। तब जाकर के व्यवस्था हो सकती है, अन्यथा ऑनलाइन से शिक्षा मुख्य धारा में आने वाली नहीं।
जी सर, सर अभिभावक अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजे, इसके लिए क्या संदेश देना चाहोगे अभिभावकों को?
नहीं, अभिभावक कितने दिन तक स्कूल नहीं भेजेंगे, ठीक है, तीसरी लहर की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हम कब तक करेंगे? आज देखिए बच्चा दो साल से घर में पढ़ा है, अभिभावक भी परेशान है, तो उनको काम निकल करके करना चाहिए, बच्चे की वजह से नहीं कर पा रहे, क्योंकि बच्चे की ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, खास करके पांचवी तक के बच्चों का, तो उनके साथ एक जन को बैठना पड़े, या तो माता बैठ रही है, पिता बैठ रहे हैं, या उनके घर के कोई भी सदस्य बैठ रहा है, तो उनके भी काम बाधित हो रहे हैं। तो अभिभावकों को ये चाहिए कि वो स्कूल के साथ बैठे, स्कूल प्रबंधक के साथ बैठे, कॉलेज प्रबंधक के साथ बैठ करके एक रणनीति तय करे, किस रणनीति के हिसाब से स्कूल को चलाया जाए, कैसे चलाया जाए, और जो मानक व्यवस्था है उस मानक को अपनाया जाए, जो कोरोना के अंदर लाया गया है कि 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, इस व्यवस्था को ध्यान में रखकर अभिभावक भी स्कूल प्रबंधन का साथ दे और स्कूल प्रबंधक भी अभिभावक का साथ दे, दोनों लोग मिलकर के एक रणनीति तय कर ले और स्कूल को चलाए। स्कूल भेजने से डरने की जरूरत नहीं है, अगर हम डरेंगे तो कब तक हम डरते रहेंगे? आज ऐसा तो है नहीं कि कोई भविष्यवाणी तो है नहीं कि कोरोना कल चला जाएगा तो कल तक हम स्कूल नहीं खोलेंगे, तो ऐसा नहीं, हमको स्कूल को धीरे धीरे खोलना होगा, पार्टों में करके खोलना होगा और अभिभावक को अपने मन से डर निकालना होगा और बैठ करके एक रणनीति बनानी होगी कि किस प्रकार से इसको किया जाए, तो एक समय सारणी पाई करके स्कूल को चलाया जाए और अभिभावक भी निशिक्र होकर बच्चों को स्कूल भेजे, तो कोई दिक्कत नहीं।
जी सर, तो ये थे डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से राज्यों में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की कमी के साथ साथ बच्चों को होने वाली परेशानी, परिवहन हो, होटल व छात्रावास खुले, इसको लेकर अनूप सर ने मोबाइल वाणी के साथ जानकारी साझा की। अनूप सर, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
छिंदवाड़ा वालन से आपका दोस्त योगेश।